What a wonderful new element introduced into our general
क्या
conference.
एक बढ़िया बातें बताई है एडवार्डो ने.
In what would be the most startling moment of his early ministry, Jesus stood up in his home.
जो उनके प्रचारक के शुरुआत का आश्चर्यजनक पद होता है, यीशु नाजरत के अपने घर के प्रचार स्थान में घटे हुए थे. उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाना के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे दिलों को चंगा करो. इन शब्दों को पढ़कर उद्धारकर्ता ने पहला सार्वजनिक घोषणा किया और अपने मसीह प्रचार का. मगर ये वेश से भी स्पष्ट होता है कि उनके आखिरी प्रायश्चित के बलिदान के मार्ग पर और पूर्ण जीवन के समय यीशु का पहला और जरूरी मसीह जिम्मेदारी किया गया था. अपने प्रचार की शुरुआत से यीशु गरीब और मासूम से एक अलग ढंग से प्रेम करते थे. वो उसी तरह के दो लोगों के घर में जन्मा था और वैसा कई लोगों के बीच पड़ा. हम उनके जीवन के सभी सांसारिक तत्व नहीं जानते, मगर उसने एक बार कहा है, लोमड़ियों के घरने में और पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं मिला. हम जानते हैं कि स्वर्ग और जगत को और उसमें की सारी वस्तुओं की रखने वाले अपने बुजुर्ग अवस्था में बिना घर के थे. इतिहास भर में गरीबी मानव जाति की सबसे बड़ी और फैली हुई कठिनाई रहती है. गरीबी की परिणाम अक्सर शारीरिक होती है, मगर जो आत्मिक और भौतिक नुकसान उससे पहुंचता है बहुत ही हानिकारक होती है. किसी भी कहानी में उस महान मुक्तिदाता ने लगातार हमें पुकारा है. यहोवा की भूमिका में उसने कहा, वो इसराइल के घराने के कढ़ाई से जांच करेगा का तुमने लूट कर अपने घरों में रखता है. तुम्हारे क्या मतलब है, उसने कहा, कि तुम मेरे प्रजा को पीटोगे और गरीबों के चीजों पर को पीस डालोगे. प्रभु का लेखक इस बात को स्पष्ट करता है, जो अपने पड़ोसी को तू जानता वो पाप करता है और जो कंजव की दुहाई पर कहा ना देता वो खुद पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी. हमारे दिनों में यीशु मसीह का पुष्नापित गिरजाघर के एक साल के लिए भी अभी पुष्नापित नहीं हुआ था जब प्रभु ने अपने सदस्यों के कहा, गरीब और जरूरतमंद की परवाह करो. उस वक्त में आज्ञा की आवाज पहुंचे, उन्हें तकलीफ ना हो. ये भविष्य भाषा परमेश्वर इस्तेमाल करता है जब वो चाहता है कि हम उसे करें. जब दुनिया में ऊंच नीच की कठिनाई हो छोड़ती है कि बात आती है, एक पुरुष क्या कर सकता है. जब परमेश्वर बताता है, उसके भविष्य वगत और क्रूस पर चढ़ते पहले मेरी ने यीशु के सिर पर कीमती चमत्कार का तेल डाला था. जूदास इस्करियोती ने इस विरुद्ध किया और उसके विरुद्ध कहा. यीशु ने कहा, तुम उसे क्यों सताते हो, उसने तो भलाई की है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया ये एक शक्तिशाली सफाई है. ये रिप्रूपतार ने एक बार कलकत्ता के माता तेरेसा से शहर के गरीबों को बचाने के आसान आशाहीन काम के बारे में पूछा. उसने संख्या को देख के कहा, उसने कुछ भी तो हासिल किया है. इस छोटी सी महिला ने तुरंत जवाब दिया कि उसका काम प्यार से भरे में था. हम जो भी जो पाते हैं शायद सागर में सिर्फ एक बूंद सकते हैं, उसने कभी कहा, पर अगर हम वो ना करें तब सागर में एक बूंद कम होगा। उसने क्या तय किया कि अगर स्वर्ग में ज्यादा खुशी होती है एक पति को लेकर, पापी को लेकर जो पश्चाताप करता है उन्हें निभाने में, मालूम करता है परमेश्वर पश्चातों की परवाह नहीं करता। एक बात के लिए जिसे राजा बेंजामिन ने सिखलाया था, हम इस कारण से अपने सिद्धांतों को दबा कर ना रखें क्योंकि हम सोचते हैं कि गरीबों से अपना दुख खुद अपने ऊपर लाया है। शायद कुछ लोगों के कठिनाइयों उन्हीं के कारण आई है, पर क्या बाकी लोग वही नहीं करते? क्या यही वो वजह नहीं है कि ये दयालु राजा पूछता है, क्या हम सभी भिखारी नहीं हैं? क्या हम सब मदद और आशा और प्रार्थनाओं के जवाब के लिए नहीं पुकारते? क्या हम सब अपने गलतियों और हमारे जरिए उत्पन्न हुए मुसीबतों के लिए माफ़ी की भीख नहीं मांगते? क्या हम कृपा की भीख की आलोचना नहीं करते कमजोरियों को छुपने के लिए कि दया न्याय के ऊपर विजय होगा हमारे स्थिति को लेकर? ये आश्चर्यजनक नहीं है, राजा बेंजामिन कहता है, पापों से क्षमा पाते है परमेश्वर से विनती करते करके बंद जो दया से उत्तर देता है, मगर हम अपने पापों के क्षमा होने को रोक देते हैं जब हम गरीबों की विनती नहीं सुनते। दया के साथ दीन लोगों की सहायता करने के साथ हमें उन जरूरतमंद के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। जर्मनियों का एक दल जिनके धर्म के घंटे और बेकार जमते थे समझते थे को उनके प्रार्थना घरों से बाहर भेजा गया क्योंकि उनका पहनावा घटिया था। मार्मर कहता है सांसारिक समाप्ति की उनके पास बहुत ही कम वस्तुएं थी और हृदय से भी दो स्थितियों जो लगभग हमेशा साथ आती है। अल्मा और अमलक जो एक साथ प्रचार करते थे ने उन गलतियों पोषक से लोगों को हित में बांटे और उनसे बतलाया कि वो हमेशा अपने खेतों, अपने घरों, अपने परिवार और अपने हृदयों में प्रार्थना कर सकते हैं। पर फिर इस दल से जिन्हें खुद ठुकराया गया था से अमलक ने कहा है, प्रार्थना करने के बाद अगर तुमने किसी दिन और नंगे को ठुकराया और बीमार और दुखी को ना भेंट किया और अपने संबंध में तुम्हारे पास होते हुए जरूरतमंद नहीं ना दिया, मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं होगा और तुम उसी प्रकार धोनी होंगे जैसे कि अवस्थित होता है। ये हमें सिखलाती है कि याद दिलाता है चाहे हम धनवान हो या गरीब, हमें जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए जरूरतमंद के लिए। अब मुझे दोषी ना ठहराना चाहिए जैसे मैंने रास्ते पर भीख मांगने वाले की उचित कराया करता है, इसलिए मैं उसको अवश्य देता हूँ। मैं भी लोगों की तरह मेहनत, कम खर्ची, आत्मनिर्भरता और अभिलाषा के सिद्धांत को मजबूत से साथ देते होना जैसे कोई और जीवित व्यक्ति देता है। हमेशा हमसे आशा की जाती है कि हम किसी की मदद मांगे जो पहले खुद अपना मदद करे। इसके अलावा मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है उन लोगों के लेकर जो कभी खुद की मदद नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, मगर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जानता है और वो तुम्हें चेलापन के दयालु क्रियाओं में मार्गदर्शन देगा और तुम लगातार चाहते हो और विनती करते उसकी दिए किसी नियम को पूरा करने के तरीके ढूंढते हो जो उन्होंने हमें दिया है। तुम यहाँ समझते हो कि मैं समझ के कठिन ज़रूरतों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो सिर्फ गिरजाघर सदस्यों पर नहीं लागू होते हैं। सौभाग्य से प्रभु का तरीका अपनाने को सहायता देने और अभी आसान है, वो सब जो शारीरिक रूप से चंगा हो। क्या यो उपवास नहीं जो मैंने चुना है? क्या वो नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और आनंद और मारे फिरते हैं, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, दुखी लोगों को छुड़ा लेना? मैं उन चमत्कारों की गवाही देता हूँ दोनों धार्मिक और संस्कारी जो उन्हें मिलता है जो उपवास के नियम को जीते हैं। मैं उन चमत्कारों की गवाही देता हूँ जो मेरे साथ घटते हैं। सच में जैसे ईसाया ने लिखा, मैंने अपने उपवास में पुकारा और सच में परमेश्वर ने जवाब दिया है। मैं यहाँ हूँ। इस पवित्र सौभाग्य को कम से कम हर महीने जो आजमाओ और अपने उपवास भेंट में जितना हो सके उतना धनशील रखो और अन्य ह्यूमैनिटेरियन शिक्षा संबंधी और प्रचारक दानों में। मैं वादा करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ धनशील रहेगा और जो लोग तुम्हारे हाथों से सहायता प्राप्त करेंगे तुम्हारे नाम को सदा धन्य कहेंगे। कि जगहर के 750,000 से ज़्यादा सदस्य को पिछले साल उपवास भेंटों से सहायता मिली है जो सेवनशेट बिशप और सहायक संस्था प्रधान के द्वारा दिया गया था। इससे तो कितने सारे आभारी अंतिम दिन संत हुए। भाई और बहनों, इस तरह के भाषण में मुझे मेरे जीवन के नाम कमाए अयोग्य को खत्म होने वाले आशीर्वाद को याद करता चाहिए। दोनों संसारिक और धार्मिक, तुम्हारी तरह मुझे पैसे की चिंता होती है थी समय समय पर मगर मैं कभी गरीब नहीं था। ना तो मैं जानता हूँ कि गरीब कैसे महसूस करते हैं। इसके अलावा मैं सभी कारण नहीं जानता कि क्यों जन्म, स्वस्थ, पढ़ाई और आर्थिक मौके मरणशीलता में इतने अलग है, मगर जब मैं सैकड़ों लोगों की मांगों को देखता हूँ, मैं ये नहीं जानता कि अगर परमेश्वर का कृपा नहीं होता मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपने भाई का रखवाला नहीं, मैं अपने भाइयों का भाई हूँ और क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया गया है मुझे भी देना चाहिए। इस बात को लेकर मैं प्रधान थॉमस इस मोशन को खुद समर्थित करता हूँ। मुझे इस मनुष्य को 47 वर्षों से जानने का आशीर्वाद मिला है और मरते दम तक मैं उसका एक रूप हमेशा याद रखूँगा। जब वो आर्थिक रूप से युजता हुआ पूरब जर्मनी से लौटता था, घर में पहनने वाले जूते पहनकर, क्योंकि उसने सिर्फ अपना दूसरा सूट और अन्य शर्ट ही नहीं पर के जूते भी दान कर दिए थे। कितने सुंदर हैं पहाड़ों पर हवाएं से गुजरने वाले उनके पैर जो अच्छे समाचार और शांति लाता है। प्रधान मोनसन ने हमेशा वही किया जो वो कर सकता है, किसी और से ज़्यादा मैंने महसूस किया है। प्रधान मोनसन ने विधवाओं और बिना पिता के बच्चों के लिए और जो अब तक कहा है। 1831 के एक प्रतिकरण में प्रभु ने जोसेफ स्मिथ से कहा कि गरीब एक दिन परमेश्वर का राज्य को उनके पास आता देखेगा शक्ति और महान महिमा के साथ। मैं आशा करता हूँ कि हम भी भविष्यवाणी को पूरा करने में मदद करेंगे, अपने सच्चे यीशु मसीह के गिरजाघर के सदस्य की शक्ति और महिमा में वो करें जो हमसे गरीबी के बंधियों को छुटकारा दिलाने और उसके सपनों को नष्ट होने से बचाने के लिए। मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह के कृपालु नाम से, आमीन।